بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ سن رہے ہیں اردو پوڈ کاسٹ اور میرا نام ہے وقاص میر۔ ہمارے آج کے اسپیشل گیسٹ ہیں امام سلیم الوی صاحب، آئی سی سی نوروے کے امام بھی ہیں اور پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں۔ ایک فیملی کے اوپر ایک سیریز ہم کر رہے ہیں جس کے اوپر وہ کافی پیاری پیاری باتیں ہم سے کر چکے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے وراثت کے اوپر، تو پہلے میں ان کو ویلکم کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقاص بھائی، بہت شکریہ کہ آپ نے ایک دفعہ پھر اپنے پلیٹ فارم کے تھرو سامعین سے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، آج کے موضوع کے حوالے سے تو بڑا اہم موضوع ہے اور اس اہم موضوع کے حوالے سے بہت سارے مس کنسیپشنز ہیں کہ جو ہمارے ہاں عام طور پہ پائے جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔
ہاں جی مولانا صاحب، ہمارے پاس ہمارے کلچر میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ کلچر کا حصہ اس حد تک بن چکی ہیں کہ گھر گھر میں مس کنسیپشنز پائی جاتی ہیں، ایک اس طرح قسم کے سوالات اٹھتے رہتے ہیں، اور بعد میں جب آپ کسی بندے سے بات کرتے ہیں جو کہ عمر میں اس لیول پہ ہو کہ آپ ان سے سوال پوچھیں کہ آپ کو بتا سکیں کہ وراثت کیا ہے، وصیت کیا ہے، ان کو بھی نہیں پتا ہوتا، بس جو دیکھا ڈراموں میں، ادھر دیکھا، کسی سے سنا، کسی سے پوچھا۔ تو یہ مس کنسیپشنز جو ہیں اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر، کیا ایک مسلمان کے لیے جائز ہے کہ یہ نہ جان؟
دیکھیں، بیسیکلی ان اویئرنیس ہمارے ہاں ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ہم نام بھی مسلمانوں والا ہے، کچھ چیزیں ہم جو ہیں وہ اسلام کی اپنی زندگی میں لے آتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی جو ہے وہ پوری مسلمانوں والی بنا لی ہے، ہم مکمل مسلمان ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے جو قرآن کے اندر ہم سے مطالبہ کیا ہے ایمان والوں کو خطاب کر کے، سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام معاملات، انفرادی معاملات ہوں یا اجتماعی معاملات ہوں، اپنے ذاتی معاملات ہوں یا خاندانی معاملات ہوں، اپنے جو ہے وہ پرسنل لائف ہو یا اپنی سوشل لائف ہو، تمام کو اسلام کے مطابق بنا لو۔ یعنی اسلام نے، یعنی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے یا کوئی جو ہے وہ زندگی کا ایریا ایسا نہیں ہے یا فیز ایسا نہیں ہے ایج کا کہ جس کے حوالے سے اسلام نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رول ماڈل قرار دیا گیا، تو آپ نے یعنی بینگ اے ہسبینڈ، اچھا اس کے بعد بینگ اے فادر، اس کے بعد آپ دیکھیں گے بینگ اے رولر، ہر حوالے سے بینگ اے ٹریڈر، آپ نے زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں رہنمائی کی ہے، رہنمائی دی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ آپ کے معاملات کیسے ہونے چاہئیں۔ تو اس حوالے سے ہم عام طور پہ ہمارے کلچر کے اندر کچھ چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انڈین کلچر سے ہم میں آئی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی شاید اسلام ہی ہے یا اسلام نے ہمیں اس حوالے سے جو ہے وہ چیزیں اوپن رکھی ہیں۔ دیکھیں، قرآن میں سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل کے ساتھ یعنی شیئرز بتائے ہیں کہ کس کا کتنا شیئر ہوگا، یعنی بیوی کا شیئر بتایا، ہسبینڈ کا شیئر بتایا، اچھا اس کے بعد پیرنٹس کا جو ہے وہ شیئر بتایا، اسی طرح جو اولاد ہے ان کا شیئر بتایا، اور اس کے بعد پھر جو دوسرے ریلیٹیوز آتے ہیں ان کے حوالے سے بتایا کہ اگر جو ہے وہ ماں باپ نہیں ہیں، بیوی بچے نہیں ہیں، تو پھر جو ہے وہ اللہ نے بتایا ہے کہ پھر بہنوں کا حصہ، بھائیوں کا حصہ، اور پھر جو دیگر ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کا حصہ ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے اس کو پریکٹس کرنا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو پرابلم ہے، یعنی ان اویئرنیس بھی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، اور ایک تیسری چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ اگر کسی کو انڈرسٹینڈنگ ہو بھی صحیح، اور اس میں پھر جب وہ مالی معاملات کی بات آتی ہے تو اس میں پھر تھوڑا سا نا وہ ریجڈنیس آ جاتی ہے، اور وہ اس کو پریکٹس اس انداز میں نہیں کیا جاتا، اور اس میں کوششیں کی جاتی ہیں، تعویلات کی جاتی ہیں کہ تاکہ کسی طرح وہ چیزیں نہ ہوں۔
لیکن آپ کے پاس کافی لوگ آتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں آپ سے، کیونکہ آپ ان کو جب ان سے بات کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो नॉलेज आपने मुझे अभी बताया कि सूरह निसा में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारे शेयर्स का बता दिया है, पूरे का पूरा चार्ट है, एक किस्म का पूरे का पूरा चार्ट बना हुआ है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए इसी तरह चलेगा सब कुछ, तो उस चार्ट में उस पूरे के पूरे कैलकुलेशन में अल्लाह ताला से तो कभी गलती हो नहीं सकती, तो क्या जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं जो किसी ऐसी सिचुएशन में होंगे या हो रह चुके हैं, क्या आपको लगता है कि उनमें से जो ज़्यादा लोग इस मुश्किल से गुजर चुके हैं जब इस कैलकुलेशन से हट के कुछ करते हैं तब मुसीबतें आती हैं उन पे भी, जिन्होंने उसको मिसयूज़ किया, उन्होंने भी जिनको साइड पे कर दिया, या फिर आपको लगता है कि हर बंदे को प्रॉपरली सूरह निसा जो है ना वो उनको ये हिस्सा पक्का करना चाहिए उनका, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के सामने जवाब भी देना है एज अ बच्चा और एज अ फादर, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बता दीजिए कि कितनी ज़रूरी है उस मुसलमान के लिए सूरह निसा की वो आयतें।
जी, इसमें ना बाकायदा रिवायात में ये चीज़ आती है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनकी, जो कि उस दौर में तो आम ये ट्रेंड था कि हर बंदे के पास ना तलवार होती थी, तो वो तलवार का जो कवर होता था तो उस कवर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो है वो कुछ ख़ास चीज़ें जो है वो लिख के रखी हुई थी, और उनमें ये आता है कि उन्होंने विरासत के अहकाम जो है वो उनमें लिख के रखे हुए थे हर वक्त, तो वो कहते थे कि ये बाकायदा ये इसको यानी ख़ास तौर पे इसकी अहमियत है। और ये भी रिवायात में ये चीज़ आती है कि इसमें यानी फ़राइज़ के इल्म का जो इल्म है कि अल्लमुल फ़राइज़, जैसे नमाज़ फ़र्ज़ है, ज़कात, ठीक इसी तरह उस इल्म के अंदर विरासत के इल्म को भी शामिल किया गया कि इसको भी उसी तरह सीखा जाए। अब जाहिर बात है कि जैसे हम नमाज सीखते हैं, जैसे हम रोज़े के अहकाम सीखते हैं, यानी सीखने का मतलब ये है कि रोज़े के अवकात सीखते हैं, फिर रोज़े के हालत में जो पाबंदी होती है, इसी तरह ज़कात के हवाले से, इसी तरह विरासत के हवाले से भी हमें सीखना चाहिए, उसको अहमियत देनी चाहिए। और अल्लाह ताला ने वहाँ पे अल्फाज जो कुरान के अल्फाज हैं कि विरासत के अहकाम जिक्र करके फिर अल्लाह ने फरमाया कि तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, और जो अल्लाह की हदों को पामाल करता है तो उसके लिए बड़ी सख्त वईद है, बड़ी सख्त नाराज़गी है। हमारे यहाँ जो आम प्रैक्टिस है कि जब विरासत तकसीम करने की बारी आती है, और वो मैं ये समझता हूँ कि इंडियन कल्चर से हमें आई है कि हिंदू मज़हब में ख़वातीन को विरासत नहीं दी जाती, बहन को बेटी को विरासत नहीं दी जाती, तो उनके यहाँ जो ये कंसेप्ट था हमारे यहाँ भी वो आया, तो हमारे यहाँ ये आया कि यानी बेटी को बहन को मजबूर किया जाता है, सोशली प्रेशराइज किया जाता है, कि कानून के अंदर तो चीज़ मौजूद है, ठीक इसी तरह पाकिस्तान के कानून के अंदर भी, आइन के अंदर भी बेटी का बहन का हिस्सा मौजूद है, लेकिन होता क्या है कि कोशिश ये की जाती है सोशल प्रेशर में कि उसे सरेंडर करवा लिया जाए, उसका जो शेयर है, जो उसका शेयर जो उसे कुरान ने दिया है, जो इस्लाम ने उसे शेयर दिया है, वो सरेंडर करवा दिया जाए, तो सोशल प्रेशर में आके ख्वातीन सरेंडर करती हैं और ख्वातीन को महरूम किया जाता है। और ये बड़े बड़े वो मशहूर ख़ानदानों के अंदर और मजहबी ख़ानदानों के अंदर भी होता ये चीज़ें, यानी प्रैक्टिस इस अंदाज में नहीं है। तो इस हवाले से फुकहा ने बाकायदा तौर पे पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में उन्होंने ये फतावाजात भी मौजूद हैं, ये रहनुमाई भी की है कि कोई बहन या बेटी अपने हिस्से को सरेंडर कब कर सकती है, कि जब उसको उसका वो शेयर दे दिया जाए, उसकी मिल्कियत में आ जाए, और उसके बाद फिर वो अगर सरेंडर करती है तो फिर सरेंडर हो सकता है, उससे पहले सरेंडर नहीं है। बात मैं उस पर्सपेक्टिव में कर रहा था कि हमारे यहाँ जो हमारे कल्चर के अंदर ये चीज़ें हैं तो हम उस कल्चर को यानी रिलीजन समझ के वो चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। अब इस्लाम ने तो बड़ा वाज़े यानी शेयर बताया है कि बेटी का हिस्सा बाकायदा तौर पे, फिर बीवी का हिस्सा बाकायदा तौर पे, वालदा का हिस्सा बाकायदा तौर पे, यानी ख़वातीन का हिस्सा एक लिहाज से मुतय्यन किया गया है और उनको अदा करने का हुक्म दिया गया है। तो इस हवाले से यानी कमी मौजूद है और कमी अमल के लिहाज से है, और मैंने उलमा की बात की है कि हम ये कहते हैं कि जो खातून ने ख़ुद अपना ऐसा छोड़ दिया, बहन ने अपना ऐसा भाइयों को ख़ुद दे दिया, बेटी ने जो है वो ख़ुद सरेंडर कर दिया। देखें जो फुकहा ने ये बात कही है ना कि जब आप उसको दें तो सही ना, आप देते ही नहीं हैं, और देने से पहले ही आप जो प्रॉपर्टी है, जो इनहेरिटेंस जितनी भी है, तो आप इंतकाल उससे करवा लेते हैं, या उसे सरेंडर करवा लेते हैं, या वो इस प्रेशर में कि मैं आज जो है वो लूंगी विरासत, तो फिर कल मेरे बेके का दरवाज़ा मेरे ऊपर बंद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह भी हुआ है।
इमोशनली
और
ब्लैकमेल होती हैं हमारी
जी
बहनें और माएँ, जाहिर सी
जी
बात है, ये
जी
सिचुएशन आपके सामने गुजरती रहती है लोगों के एक्सपीरियंसेस के थ्रू। लेकिन वसीयत के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे प्रोग्राम को, और बताएं कि वसीयत की इस्लाम में अहमियत क्या है, और जब वसीयत ना लिखी हो तो उसको, उस सूरत हाल को हल कैसे किया जाता है?
देखिए जी, ये जो वसीयत का हुक्म है, ठीक है, ये सूरह निसा की उन आयात के नाजिल होने से पहले था। यानी सूरह निसा की आयात के नाजिल होने से पहले ऐसे होता था, अरब माशरे के अंदर ये चीज़ थी कि विरासत वो तकसीम करते थे, और विरासत उसको मिलती थी कि जो बंदा घोड़ा चला सकता हो, घोड़े और उसी तरह तलवार चला सकता हो, यानी जो ताकतवर हो, वो कहते थे विरासत उसका हक है। यानी जो ख्वातीन हैं या जो कमज़ोर बच्चे हैं, उनका विरासत हक ही नहीं है। तो
देखिए
ये जब एक बंदा फौत होता था, तो पीछे उसकी बीवी है, उसके छोटे बच्चे हैं, वो बेचारे महरूम हो जाते थे, जो बड़ा होता था उसी को सब कुछ मिल जाया करता था। तो फिर इब्तिदा में ये हुक्म आया कि विरासत का, आप वसीयत कर लें विरासत में, और अपने जो रिश्तेदार हैं उनको बाकायदा तौर पे कि मेरे बच्चों को इतना दिया जाए, मेरी बीवी को दिया जाए। ये इब्तिदा में था कि बाकायदा हुक्म था कि आप अपनी वसीयत लिख के अपने पास रखें, और ज़िंदगी का कोई पता नहीं है।
सूर्य निशान ने फाइनलाइज कर दिया सब
जी, जब
कुछ।
सूरह निसा की वो आयात नाजिल हुई, तो उसके बाद अब वो वसीयत वाला हुक्म नहीं है।
बिल्कुल
लेकिन जो है वो, चूँकि वरसा मौजूद हैं, वरसा के हिस्से मुतय्यन हो चुके हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गाइडलाइन फिर ये दी कि ला वसीयत ले वारिस, कि जिस वारिस का हिस्सा कुरान ने बता दिया है, उसके लिए कोई वसीयत नहीं है, उसको आप वसीयत कर भी नहीं सकते। ठीक है, वसीयत है उसके लिए कि जो वारिस नहीं है, जैसे भांजा है मैयत का, भतीजा है, उसकी बहन है, उसकी औलाद की मौजूदगी में वो वारिस नहीं बन सकते। तो वो अगर उनको कोई चीज़ देना चाहता है, या किसी एक्स वाई जेड किसी थर्ड पर्सन को वो देना चाहता है जो उसका डायरेक्टली वारिस नहीं है कुरान की आयात की रोशनी में, उसको अगर वो देना चाहता है, तो उसमें फिर शरीयत ने हमें ये बताया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें ये पता चलता है कि वो 1/3 के अंदर वसीयत कर सकता है, 2/3 में फिर भी उसको वसीयत करने की इजाज़त नहीं है कि वो वसीयत करे। 2/3 वो उन्हीं वारिसों को मिलेगा कि जो उसके वारिस हैं,
अपने बच्चे में।
जो उसके बच्चे हैं, जो
ठीक,
उसकी बीवी है, उसके वालिदैन हैं।
तो आग, आग का लफ्ज हम काफी सुनते थे। मैं जब पाकिस्तान में था तो जब भी अखबार जो है सफा एंड पे जाता था तो वहां पर आग की लंबी लिस्ट लगी होती थी, तो बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ। ये क्या हमारे माशरे में इस चीज को आम किया गया जो कि टोटली अन इस्लामिक है? इसके बारे में बात करेंगे। कभी भी लिखा नहीं जाता, इतने ज़्यादा एड्स नहीं आ रहे उस चीज़ के, लेकिन कई लोग अपना जोश दिखाने के लिए इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में
असल
क्या हुक्म?
में बेसिकली जो आग है ना, आग एक लिहाज से सोशल बाइकाट है। ठीक है, सोशल बाइकाट की एक अनाउंसमेंट वो करवाई जाती है हमारे यहाँ, उसकी प्रैक्टिस है। देखें, इस्लाम ने हमें क्या चीज़ बताई है? इस्लाम ने हमें ये बताया है ना कि अल्लाह तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा, कि कोई बंदा किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। अब बेटे की गलतियों की सज़ा उसके वालिद को नहीं मिलेगी, इसी तरह वालिद की गलतियों की सज़ा उसके बेटे को नहीं मिलेगी। देखें, इस्लाम तो इस हद तक ओपन है कि हर बंदा वो इंडिविजुअल का जो भी अमल है, ठीक है, तो हमारे यहाँ से सोसाइटी में ये होता है कि अगर दादा ने भी कोई गलती की थी ना, उससे भी कोई गलती हुई थी, तो वो 7 नस्लों तक तो वो बात चलती है कि तुम्हारे फलाने के दादा ने फलां ज़माने में ये गलती की थी,
इसका दादा था।
तो इसका दादा था, इसका नाना था, इसका जी भाई था, इसका फलां था, तो वो एक सोशल ईवल के तौर पे उसको लिया जाता है। और उस सोशल प्रेशर में, सोसाइटी का वो जो प्रेशर है, उस प्रेशर को, यानी अगर आप ये कहें कि डिफ्यूज़ करने के लिए या उसको हटाने के लिए, तो ये वहाँ पे एक चीज़ बनाई गई कि आग कर दें, कि जब कोई बच्चे ने गलती की है तो ये हमारा तो उसके साथ कोई कंसर्न ही कोई नहीं। लेकिन इस्लाम ने
कितनी गैर इस्लामी चीज है ये।
बिल्कुल, इस्लाम ने इस हवाले से बिल्कुल ओपन कहा है कि बेटा जो है, चाहे फाजिर है, चाहे जैसा भी है, ठीक है, उसको विरासत से महरूम
अगर दीन से निकल गया तो, दीन से निकल गया बच्चा, इसके ऊपर कुछ है हुक्म?
इस हवाले से तो है कि मुसलमान का वारिस मुसलमान ही बनता है,
ठीक है,
ठीक है, मुसलमान जो है वो किस का वारिस कोई गैर मुस्लिम नहीं बन सकता है, मुसलमान का वारिस मुसलमान होता है, ईमान तो है, लेकिन उसके अंदर फिर ये नहीं है कि जी मुत्तकी हो, परहेजगार
तो
हो,
मुसलमान हो, कलमा पढ़ने
मुसलमान
वाला
हो,
है।
कलमा पढ़ने वाला है, बाकी उसका ज़ाती अमल है, अगर उसके अमल में कोई कमी है, बेटे के अमल में कोई कमी है, या जो भी है, तो बहरहाल उस वजह से उसको विरासत से महरूम नहीं किया जाएगा।
आपके पास जब कोई भी बंदा आता है, आपसे टाइम लेता है, आपसे बात करता है, अपने अपने बारे में करता है, या फिर कोई सिचुएशन पाकिस्तान में होती है उसके बारे में करता है, हमारे सुनने वालों में सैकड़ों नहीं हजारों लोग इस तरह के होंगे जो कि कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन से गुजरे होंगे जब सूरह निसा की आयात जो हैं उनको सामने ना रखते हुए वो गुजर रहे हैं उस सिचुएशन से। उनके लिए कोई ऐसी आपकी तरफ से कोई एडवाइस उनके लिए जो कि आयात को साइड पे करके अपने मामलात कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, या फिर उन बच्चों के लिए आपकी तरफ से कोई ऐसी एडवाइस, कोई ऐसी राय कि वो कैसे मामलात को आगे लेके चलें? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके होंगे, बहुत सारी बातें आपने लोगों की सुनी होंगी, कोई इसके बारे में शेयर करेंगे कि जो इस मुश्किल वक्त में है वो किधर जाए?
असल में देखिए ना, एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं बरकत का। बरकत जो है वो ज़ाहरी तौर पे हमें नज़र आने वाली चीज़ नहीं होती कि हम उसको काउंटिंग में लेके जाएं, ठीक है।
बिल्कुल
तो जब आपके माली मामलात ठीक होंगे ना, यानी बहन भाइयों का जो हक है, बेटियों का जो हक है, जो उरसा का हक है, उनको अदा किया जाएगा, तो फिर क्या होगा, आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपकी सलाहियतों के अंदर, आपके वक्त के अंदर, आपके रिसोर्सेज के अंदर, हर चीज़ में बरकत होगी। लेकिन अगर आप इसके मुकाबले में किसी का हक मार लेंगे, तो फिर आपके पास बज़ाहिर जितना भी पैसा आ जाए उसके अंदर कोई बरकत नहीं होगी। यानी कुरान ने हमें दो मिसालें दे के बताया है कि एक सूद की मिसाल दी है और दूसरा सदका की मिसाल दी है, कि बज़ाहिर सदका करने से आपके पैसे कम हो रहे हैं, लेकिन कुरान क्या कहता है कि अल्लाह सदकों को बढ़ाता है, और बज़ाहिर सूद के ज़रिए आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, आपके पास आपके रिसोर्सेज में इजाफा हो रहा है, लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है कि उसमें कमी आती है, यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदकात, के अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को अल्लाह बढ़ाता है। यानी इससे हमें ये बरकत का उसूल समझ आता है कि बज़ाहिर जो खर्च करना है लोगों पे, लोगों की ज़रूरियात पे, तो वो क्या करता है, वो आपके रिस्क में, आपके उन चीज़ों में उनको इजाफा कर रहा होता है, बढ़ा रहा होता है, और उसके मुकाबले में आप यानी पैसे अगर जमा कर करके रखना शुरू कर दें, रिसोर्सेज को सिर्फ अपने तक और किसी को वो शेयर ना करें, तो फिर क्या होगा कि वही चीज़ें आपके लिए बर्बादी का और तबाही का जरिया बन जाती हैं। कुरान में सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ने एक एग्जाम्पल दिए कि वो लोग जो पैसे जोड़ जोड़ के रखते हैं, उसमें से खर्च नहीं करते हैं, तो यही जो पैसे हैं, यही जो बैंक बैलेंस है, सोना चांदी के ज़खायर हैं, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इन्हीं के ज़रिए उसको अजाब, और क्यों देंगे, क्यों अल्लाह कहेंगे हाजा मा कनस तुम, ये वही है जो तुमने ख़जाने जमा किए थे, बस अब तुम अजाब चखो उसका जो तुमने जमा किया था। और उसके मुकाबले में जो लोग खर्च करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र के अंदर जो है वो इजाफे का ज़रिया बताया कि आप सिला रहमी करो, ठीक है, तो सिला रहमी के ज़रिए क्या होगा, आपकी उम्र बढ़ेगी, उम्र में इजाफा होगा, तो उम्र में इट सेल्फ इजाफा तो उस अंदाज में नहीं होता, लेकिन आपकी उम्र में इजाफे का मतलब ये है कि आपके वक्त के अंदर बरकत होगी। यानी
सुबह
आप मशाहिर के हालात पढ़ें कि एक एक बंदा उसने जो है वो एक एक पूरी जमात का काम किया है, उसका कंट्रीब्यूशन आप देखें कि वो पूरी सदी का कंट्रीब्यूशन एक एक बंदे ने किया है और अपनी 40-50 साल की उम्र में किया है, तो वो क्या है कि अल्लाह ने उसके वक्त के अंदर, उसकी सलाहियतों के अंदर बरकत रखी, उसको कबूलियत अता की, तो
काम में बरकत पड़ जाती है, आपके वक्त में बरकत पड़ जाती है, आपको
आपके
महसूस होता
वक्त
है कि
में।
उतने टाइम में एक बंदा करता जा रहा है, उसको समझ नहीं आ रही कैसे खत्म करूंगा मैं अपना पूरा मामला, लेकिन दूसरा बंदा उसी वक्त में शायद इतना कुछ कर चुका हो।
बिल्कुल
एक और भी सवाल मेरे पास है, वो मेरे जहन में अभी भी आया कि जाहिर सी बात है संभाल के रखना अपनी दौलत को, बचा के रखना कि बुरे वक्त में काम आएगी, ठीक है, ये सोच भी है, कुछ लोगों की, और कुछ लोगों की ये भी होती है कि इतनी देर तक बचा के रखना है कि जब कुछ भी ना बचे तब तक बची रहे और पता ही ना चले कि किसके ऊपर इस्तेमाल होगी। तो इस तरह के मामले में कोई ऐसे ऐसी सिचुएशन में अगर कोई है जहाँ पर आप माली हालात से आपके बच्चे जो हैं वो परेशान हैं, उनको इश्यूज हैं किसी किस्म के, अभी पाकिस्तान से भी लोग सुन रहे हैं, अमेरिका से भी हमारे काफ़ी ज़्यादा लिसनर्स हैं, यूरोप में भी हैं, तो मामलात हमारे कल्चर वाले बंदों के ना जिनका कनेक्शन हमारे इंडो पाक से है उन सब के एक ही किस्म के, बेचारों के सब के एक ही किस्म के होते हैं। यहाँ तो बहुत ज़्यादा दौलत होती है लेकिन उस वक्त उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होता कि बाद में देखी जाएगी, बाद में जाके देख लेना। इसके ऊपर थोड़ा सा थोड़ी सी रोशनी डालें कि इस्लाम क्या कहता है इसके बारे में।
असल में ना ये दो चीज़ें हम जिसको वो कहते हैं कि जी बुरे वक्त के लिए बचा के रखें।
सबूरा वक्त
तो बुरा वक्त अगर आप जो है वो क्या करें, बांट के खाएं, तकसीम करें, अल्लाह की मखलूक के ऊपर खर्च करें, तो ये जो है वो आपके ऊपर बुरा वक्त आने ही नहीं देता है।
बिल्कुल
अल्लाह के नबी
माशाल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा वाज़े फरमान है कि जो है वो सदका क्या करता है, अल्लाह के गज़ब को, अल्लाह की नाराज़गी को जो है वो मिटाता है,
बुला
ख़त्म करता
निकालता
है।
है बेशक।
ठीक है, और उसके बाद सदक़े का दूसरा फ़ायदा अल्लाह के नबी ने ये बताया कि मुसीबतें, आजमाइशें। ठीक है, तो वो बुरा वक्त वो क्या है, मुसीबतें और आजमाइशें ही हैं ना। तो आप सदका करेंगे, बांट के खाएंगे, और उसमें फिर सदका करना किसके ऊपर, ये सदका तो एक अलग पूरा टॉपिक है, उसकी तो हम अलग से प्रोग्राम उस पर कर सकते हैं। अभी चूंकि बात विरासत की चल रही है, तो विरासत ही के ज़िमन में, यानी जब आप अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपनी फैमिली के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बेहतरीन सदका करार दिया। यानी एक बंदा अपनी फैमिली पे खर्च कर रहा है, अपनी बीवी पे, अपने बच्चों पे, तो इसको भी अल्लाह के नबी ने सदका करार दिया कि ये भी एक सदके के ज़ुमरे के अंदर आता है कि आप उनकी बेसिक नीड्स पूरी कर रहे हैं, उनकी जो जायज़ ख्वाहिशात हैं दायरे शरीयत के दायरे के अंदर रहते हुए आप पूरी करते हैं, कोई मसला नहीं है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से हमें जो तालीम दी है वो ये है कि आप यानी इन्फाक का जो दायरा है, ठीक है, वो पराए ये दूर वाले वो बाद में आते हैं, पहले अपने आते हैं। अब फारसी में एक मुहावरा हमारे यहाँ बोला जाता है कि अव्वल खेश बाद दरवेश, कि पहला जो अपना है ना उसके ऊपर खर्च करें, उस पे खर्च करने का आपको दोगुना सवाब मिलेगा, और फिर जो दूर वाले हैं या पराए हैं, ये जो आपके साथ रिश्तेदारी या ताल्लुक़ नहीं है, तो वो बाद में आते हैं, उन पे तो सिर्फ सदका करने का सवाब, और अपनों पे खर्च करेंगे तो सदका भी होगा और सिला रहमी भी होगी। और फिर जो अपनी फैमिली है उसके ऊपर आप सदका करते हैं या उसके ऊपर आप खर्च करते हैं, तो हम हमारा ये भी मिसकनसेप्शन है कि हम ये समझते हैं कि सदका तो फिर सिर्फ गरीबों को ही दिया जा सकता है, उन्हें पे जो खर्च करेंगे वो सदका होगा। अपने बीवी बच्चे, ठीक है, वो हो सकता है कि वो घुट घुट की जी रहे हैं या उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही, और वो सदके का, तो अपने बच्चों की नीड्स पहले पूरी करनी है, उनकी जो ज़रूरियात हैं या उनकी जो भी जायज़ ख्वाहिशात हैं आप पूरी करें, कोई मसला नहीं है, ये भी सदके के ज़ुमरे के अंदर आता है। फिर दूसरी जो हमें इस्लाम ने तालीम दी है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, वो ये है, आपने फरमाया कि अगर तुम अपने वरसा को खुशहाल छोड़ के जाओ वो बेहतर है इससे कि वो तुम्हारे जाने के बाद अपनी ज़रूरियात के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाते फिरें। नहीं, अपने जो रिश्तेदारों पर आप खर्च करें, अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करें, तो जितना भी करेंगे, जितने अल्लाह ने आपको वसाइल दी है, तो एक कुरान में अल्लाह ने फरमाया ना कि वफ़ी अमवालिहिम हक़ुल लिस्साइली वल महरूम, के अल्लाह ने लोगों के माल में सवालियों का भी हक रखा है और महरूम लोगों का भी हक रखा है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हें तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से रिस्क दिया जाता है, इन्नमा तुरज़कूना बिज़ुआफ़ाइकुम, कि तुम्हें तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से, और कमज़ोर कौन है, औलाद मोहताज है, वो बेचारे ज़रूरतमंद हैं, बच्चे जब तक वो खुद कमाने के काबिल नहीं होते वो तो ज़रूरतमंद है ना, तो उनको वालिदैन देंगे तो उनकी ज़रूरत पूरी होगी, वो नहीं देंगे या उनको वो खाम खा उनके ऊपर वो ग्रिफ्ट लगा देंगे, पाबंदी लगा देंगे कि नहीं ये नहीं, ये नहीं जी, फजूल खर्ची तुम करते हो। ये तरबियत अलग चीज़ है, लेकिन तरबियत के साथ साथ उनकी जो, अब अगर आप उनकी ज़रूरियात नहीं पूरी कर रहे हैं तो अब ज़रूरत तो है, ठीक
कहाँ से करेंगे
है, तो
वो।
वो कहाँ से पूरी करेंगे। ठीक है, तो फिर जाहिर सी बात है कि और अगर वो किसी और रास्ते पे चल पड़ते हैं तो फिर उसमें कसूर तो आपका भी है।
अगर इस टॉपिक को आगे लेके चलें तो एक आपके पास सबसे ज्यादा विरासत के ऊपर, क्योंकि टॉपिक आज हमारा विरासत है, इसलिए बार बार इस लफ्ज को इस्तेमाल कर रहा हूं, आपके पास विरासत के ऊपर सबसे ज्यादा कौन से सवालात आपको मुसूल होते हैं? सबसे ज्यादा आपके आमने सामने बैठ के लोग कौन से इशू लेके आते हैं? जाहिर सी बात है, अनोनमस है, तो किसी को नहीं पता किसकी बात हो रही है, आपके भी काफी
जी,
लिसनर्स
यहाँ
होंगे।
पे सबसे ज़्यादा जो सवाल आते हैं ना, वो आते हैं बहनों, ख़वातीन की तरफ से आते हैं।
अच्छा, सुभान अल्लाह।
ख़वातीन की तरफ से आते हैं अपनी विरासत के हवाले से, कि जो उनको वालिदैन की तरफ से विरासत मिलती है, उनके भाई उनको उसमें से हिस्सा नहीं देते, ठीक है। और उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, और जिसकी तरफ मैंने पहले इशारा किया, सबसे ज़्यादा
बेशक
ये ख़वातीन की तरफ से ऐसे सवाल आते हैं।
यहाँ पर रहने वाली, यूरोप में
यहाँ
रहने
पे
वाली
यूरोप पे
खवातीन
रहने वाली ख़वातीन
जमीने पीछे हैं।
जो इनकी ज़मीनें पीछे हैं, जिनके जाहिर बात है कि इन्वेस्टमेंट है और वो सारी चीज़ें, तो उनके वालिदैन ने इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, तो ये सारी चीज़ें। और इस हद तक भी फिर है कि मतलब वो सारी ज़िंदगी वो अपनी बेचारी यहाँ पे बचतें करके, उन्होंने वहाँ पे अगर कुछ लिया है तो उस पर उन्हीं के भांजे भतीजे, उन्हीं के जो भाई हैं, वो पहले गार्डियन थे, और गार्डियन से होते होते वो मालिक बन जाते हैं, और एट द एंड वो कुछ भी बंदे को नहीं मिलता है। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी ली जाती हैं, उनको मिस यूज़ किया जाता है, और वो बेचारे ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी बहनें, वो खाली आत एट द एंड रिश्तेदारी बचाने के लिए, या सिर्फ जो है वो एक ताल्लुक बचाने के लिए, या उनको एक और अंदाज भी, जी अगर वालिदैन भी जिंदा हैं तो वालिदैन उन्हें कहते हैं कि जी तुम्हारी अपने भाई को दे दोगी या दे दोगे तो क्या होगा, तुम्हारा भाई ही है ना, ठीक है, या तुम्हारी बहन ही है, इसको दे दो, ठीक है। अब हालांकि उसकी अपनी मेहनत की कमाई है, उसकी अपनी सेविंग है, वो सारी चीज़ें वालिदैन रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन वालिदैन फोर्स
सोच
तो नहीं कर
सकते हैं।
सकते। ठीक, एक तो ये सबसे ज़्यादा आता है। दूसरा आता है वालिदैन बच्चों की तरफ से, ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं कि जिसमें बच्चे आके बताते हैं कि हमने यहाँ पे रहना है, यूरोप में रहना है, हमारी जो ज़रूरियात हैं वो यहाँ के लिहाज से हैं, और हमारे जो वालिदैन हैं वो हमें ट्रीट करते हैं पाकिस्तान के लिहाज से, ठीक है, क्योंकि वो पाकिस्तान में बॉर्न एंड रेज हैं, तो यहाँ पे वो जॉब के लिए आए, ठीक है, हम उनकी वजह से यहाँ पे आए, सारी चीज़ें, लेकिन हमने यहाँ पे इस सोसाइटी में रहना है, यहाँ पे रहते हुए हमें स्टेबल होना है अपने आप को, लेकिन वालिदैन क्या, यहाँ भी दो पैसे बचे हैं तो पाकिस्तान में ये ज़मीन खरीद लो, पाकिस्तान में प्लाट खरीद लो, पाकिस्तान में प्लाजा बना लो, तो वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी या पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट या वो सारी चीज़ें जो बच्चे यहाँ पे बॉर्न एंड रेज हैं उनके, वो किसी काम की नहीं है, ना ही उनकी उस लिहाज से। तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ एक और भी वो कंसेप्ट था पुराने ज़माने में, और अभी भी पाकिस्तान के अंदर है, कि जी जिस तरह उन्होंने पहले जिक्र किया, बुरे वक्त के लिए बचाना है, तो बुरे वक्त के लिए करते करते वो इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, करते जाते हैं, और ज़मीनों पे ज़मीनें, मकानों पे मकान, प्लाटों पे प्लाट वो लिए चले जाते हैं, और खुद जो है वो हैंड टू माउथ हो कि अपने बच्चों को भी हैंड टू माउथ ही रखते हैं,
जिस बुरे
कि
वक्त से बचाना है वो अपने पर आ
जी
गया हुआ है उनका, लेकिन उनको
वो
समझ नहीं आ रही।
जी। तो उसमें ना एक एक मैं एक हदीस आपके सामने जिक्र करूंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि
सुनाओ
वसल्लम ने
सुनाओ।
एक मौके पे फरमाया ना, भी तुम में से कौन है कि जिसे अपने वरसा का माल महबूब है? तो साहब इकराम कहने लगे कि या रसूल, ऐसा कौन हो सकता है, हर बंदे को अपना माल ही अच्छा लगता है, कि जी मेरी अपनी कमाई है, मेरी अपनी मेहनत है, मेरी अपनी सेविंग है। तो हुजूर ने फरमाया कि फिर तुम्हारा माल तो वही है ना जो तुम इस्तेमाल कर लो, ठीक है, सदका कर लो, या खा पी लो, इस पहन लो, पहन के बुसीदा कर लो, खा के ख़त्म कर दो, या सदका करके अपने लिए बचा लो, बाकी माल तुम्हारा तो नहीं है, जो हम बैंक बैलेंस बना रहे हैं या प्रॉपर्टीज बना रहे हैं वो हमारे तो किसी काम नहीं आने वाली,
बिल्कुल
वो
बिल्कुल
तो आगे वरसा की है। और फिर आम तौर पे ये जो हमारे सामीन हैं उन्होंने भी अपनी फैमिलीज़ में वो इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं या ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, मेरे पास तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं कि लोगों ने सारी ज़िंदगी करते रहे, और फिर एट द एंड क्या हुआ कि वही जिनके लिए वो बचा रहे थे, वही बहन भाई आपस में वो लड़ते रहते हैं सारी ज़िंदगी, कि जी फलां प्लाट मैंने लेना था, और फलां जो है वो अच्छी प्रॉपर्टी फलां ने ले ली, फलां ने ले ली, और वो होते होते क्या होता है कि वो बहन भाई ही आपस में उस प्रॉपर्टी की वजह से दूर हो जाते हैं।
सुबह हमारा ये टॉपिक जो है ना, ये डिमांड करता है कि ये काफी घंटों का हो, क्योंकि काफी एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, बावजूद इस चीज के कि आपने उसको बड़े प्यार से छोटा सा करके सबको समझा दिया है। तो आखिरी आखिर में कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को, कोई ऐसी बात जो कि वो याद रखें?
मैं अपने लिसनर्स को ना आपके रेफरेंस से बिल्कुल मुख्तसर सा एक पैगाम देना चाहता हूँ। देखें, हमारे बहन भाइयों ने जो किया है वो उनके मामलात हैं, हम जिम्मेदार हैं अपने अमल के, कि हम अपनी औलाद के साथ सबसे पहले उनका हक है, कि हमारी बीवी हमारे बच्चे सबसे पहले उनका हक है, या हमारे वालिदैन हैं उनका हक है, उसके बाद फिर हमारे बहन भाई आते हैं या हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो आते हैं। तो हम सबसे पहले अपने बीवी बच्चों की ज़रूरियात पूरी करें अपनी ज़िंदगी में, और उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट, अब जो आज के दौर में, जो आज 2024 में जो हमारे बच्चों की ज़रूरत है, हम अगर 2050 की प्लानिंग कर रहे हैं तो 2050 में पता नहीं क्या हालात होंगे या क्या रियलिटीज़ होंगी और क्या किस अंदाज़ के चैलेंजेस होंगे, हमें नहीं पता है। तो हम अगर आज के दौर में रहते हुए, ठीक है, मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन मुस्तकबिल हमारे हाथ में तो नहीं है, ठीक है, तो हम यानी मुस्तकबिल को देख के उसकी रोशनी में हम अपने हाल को ख़राब न करें, अपने हाल को ठीक करें, अपने मामलात को ठीक करें। और कोई भी पता नहीं है, किसी भी वक्त हमारी जो ज़िंदगी है, मोहलत अमल हम इसको कहते हैं, ये ख़त्म हो सकती है। अगर हमने अपनी बीवी अपने बच्चों के हकूक़ पूरे नहीं किए, वालिदैन के हकूक़ पूरे नहीं किए, और उसके बाद जो रिलेटिव्स हैं उनके हकूक़ पूरे नहीं किए, तो फिर हमने तो हर बंदे ने अपना जवाब देना है,
बेशक
ठीक है। ये इसलिए मैं दो चीज़ें कहता होता हूँ कि एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बंदे के राइट्स हैं। हम में से हर बंदा अपने राइट्स का रोना रोता है, बहन अपने राइट्स का, बेटी अपने राइट्स का, वालिदैन अपने राइट्स का, औलाद अपने राइट्स का। तो कोई बंदा भी अपने राइट्स को रोने के बजाय वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना शुरू कर दे। अगर हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना शुरू कर दे कि बीइंग अ सन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बीइंग अ फादर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बीइंग अ ब्रदर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बीइंग अ हस्बैंड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो दूसरों को खुद ब खुद उनके राइट्स मिलना शुरू हो जाएंगे।
माशा
अल्लाह के नबी ने यह फरमाया कि ला वसीयत अल वारिस, के वारिस के लिए वसीयत कोई नहीं है, क्योंकि उसका हिस्सा ऑलरेडी डिफाइन है, अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया। और दूसरे नंबर पे साथ ये भी है कि जब वारिस के हक में वसीयत नहीं है, उसको एक्स्ट्रा नहीं दिया जा सकता, तो इसी तरह उसको महरूम भी नहीं किया जा सकता है। और विरासत में सिर्फ जो उसके जितने भी एसेट्स हैं, यानी सिर्फ इसमें प्रॉपर्टी नहीं आएगी, बल्कि जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट है, जितने भी उसके शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, जो कुछ भी है, जिस फॉर्म के अंदर भी वो एसेट हैं, तो वो सारे डिवाइड होंगे, तकसीम होंगे। और उसकी जो तरतीब हमें इस्लाम ने बताई है वो ये है कि जब कोई बंदा दुनिया छोड़ के जाता है तो उसके बाद उसकी विरासत और तकसीम होती है, और उसकी तरतीब भी होती है कि सबसे पहले उसके हिस्से में जो कर्ज़ वगैरह है वो अदा किया जाता है, और वो कर्ज़ अदा करने के बाद फिर जो पैसे बचते हैं, फिर उन पैसों में से या उसके जो रिसोर्सेज हैं, जो भी उसके एसेट्स हैं, उनमें से फिर उसकी वसीयत देखी जाती है कि उसकी विल क्या थी। फिर अगर मतलब उसको भी पूरा किया जाए तो उसके बाद फिर जो पीछे बचते हैं तो वो उसके वरसा में तकसीम होते हैं। यानी यहाँ पे ये चीज़ भी कई लोग सवाल करते हैं कि जी मैयत इतना कर्जा छोड़ के गया है तो उसके कर्जे का क्या होगा। तो कर्जा मैयत के अपने ही जो उसका तरका है उसमें से पहले उसका कर्जा अदा किया जाएगा, और फिर जो है वो वरसा में तकसीम माल किया जाएगा। हमारे यहाँ आमतौर पे ये हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ आमतौर पे एक्सपीरियंस की गई है, जहाँ पे बहनों का हिस्सा नहीं दिया जाता, ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ भी की जाती है कि जो बंदर बांट की तरह वो चीज़ें होती हैं, कि जैसे जो जो जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है तो वो ले लेता है, और पीछे फिर क्या होता है, अब जो कर्जा है मैयत का वो भी तो उसी तरह ही तकसीम करना होता है और वो अदा करना होता है, ये मैयत के जिम्मे बोझ होता है, तो उस पे कोई इतनी खास तवज्जो नहीं दी जाती। तो इसमें ज़रूरी ये है कि सबसे पहले ये चीज़ समझने की है कि पहले जो कर्जा है वो अदा किया जाए, फिर जो रिमेनिंग एसेट्स होंगे तो वो जो है वो तकसीम।
अच्छा, मेरे पास एक सवाल मेरे जहन में उभर रहा है। जब आप बात कर रहे थे विरासत की, तो मेरे माइंड में आ रहा था कि हमेशा जब विरासत की बात होती है तो घर के मर्द की बात होती है, ठीक है ना, कि जब मर्द चला जाएगा। लेकिन जब एक माँ चली जाती है या फिर तो उस हवाले से फिर विरासत के हवाले से क्या चक्कर है, अगर उनके भी जेवरात हों, उनके कपड़े हों, उनकी दुकानें हों, उनका किसी ना किसी मामले में उनका भी हिस्सा हो,
बिल्कुल
तो
ऐसी
ये तो अब आते हैं और ले
जी,
जाते हैं लोग, उसका क्या करें।
बिल्कुल ऐसी है। इसमें भी देखिए ना, जैसे मर्द की विरासत तकसीम होगी, इसी तरह औरत की भी विरासत तकसीम
अच्छा
होगी, ठीक है। और औरत की विरासत के भी उसी मकाम पे, सूरह निसा के उसी मकाम पे अल्लाह ने साथ ही जिक्र किया है कि जहाँ पे मर्दों की विरासत का जिक्र किया है, वहाँ पे खवातीन की विरासत का भी जिक्र किया है। जहाँ पे बीवी के शेयर का जिक्र किया है, वहाँ पे शोहर के शेयर का भी जिक्र किया है।
अच्छा
और उसमें अल्लाह ताला ने इस हद तक बताया है कि जो अगर फौत होने वाली खातून है और उसके पास कोई यानी एसेट्स हैं, तो वो उसकी औलाद है तो फिर उसका जो शोहर है उसको 25% मिलेगा, लेकिन अगर उसकी औलाद नहीं है तो 50% उसके हस्बैंड को मिलेगा, और बाकी जो है वो उसके, अगर उसके पेरेंट्स जिंदा हैं तो उनको मिलेगा, और उससे फिर करते हुए
अच्छा
जी। तो इसी तरह अगर उसके बच्चे भी हैं, उसके वालिदैन भी हैं, उसका शोहर भी है, तो वो जो फौत होने वाली खातून है उसके 25% जितने भी एसेट्स हैं, 25% उसके शोहर को मिलेगा, और बाकी जो है उसमें उसके बच्चों को और उसके वालिदैन को मिलेगा।
अच्छा
और उसमें फिर बच्चों की जो तरतीब है, लिज़्ज़करे मिस्लु हज़्ज़ल उनसैन, ये कुरान का उसूल है कि मुज़क्कर को दुगना हिस्सा मिलता है मोनस की नस्बत। तो इस पे एक बड़ी डिबेट चलती है, बहस चलती है कि जी इस्लाम ने औरतों को विरासत का आधा दिया है, ठीक है। देखें, मर्द को जो हक ज़्यादा दिया गया है तो मर्द के ऊपर फिनेंशियल बर्डन भी डाला गया है, यानी औरत के ऊपर इस्लाम में कोई फिनेंशियल बर्डन नहीं है, चाहे वो माँ की सूरत में हो, चाहे वो बहन की सूरत में हो, चाहे वो बीवी की सूरत में हो, बेटी की सूरत में हो, उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। यानी शोहर ने घर का जो बजट है वो शोहर ने अरेंज भी करना है, और वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी शोहर की जिम्मेदारी है। इसी तरह घर को चलाना है तो ये बाप की जिम्मेदारी है, माँ की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अर्न करके लाए और कमा के लाए, और तो वो उसने घर से बाहर और फाइनेंशियल इश्यूज जितने भी हैं, इकानोमी को उसने देखना है, अरेंज उसने करना है। तो इस वजह से शोहर यानी मर्द का जो हिस्सा है वो ज़्यादा रखा गया और औरत का हिस्सा कम रखा गया, बाकी में कोई ऐसा मसला नहीं है। वो यानी माली जिम्मेदारियों के लिहाज से उसकी बात है। देखिए ना, अल्लाह ताला खालिक है, खालिक के कायनात है, और मर्द भी अल्लाह की तखलीक है, औरत भी अल्लाह की तखलीक है, और अल्लाह की नज़र में तो अल्लाह ताला ने कुरान में ये बात बड़ी वाज़े अंदाज के अंदर, सूरह आल इमरान के अंदर ये बात जिक्र की है कि अल्लाह की नज़र में सारे बराबर है, ठीक है। यानी उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जी मर्द है तो उसके साथ यानी कोई डिफरेंट अंदाज में उसको हैंडल किया जाएगा और औरत है तो उसको डिफरेंट अंदाज में, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मर्द का अल्लाह ने चूँकि उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन डाला, तो अल्लाह ने उसके लिए वो शेयर रखा, और औरत पे नहीं डाला तो उस वजह से उसका कम रखा है। अब जहाँ तक बात इसी ज़िमन में एक और बातों से बात चूँकि आगे
हाँ जी
निकलती है,
बिल्कुल
तो ये बहस बड़ी चलती है कि जी इस्लाम ने जी ख्वातीन को गवाही का हक भी आधा दिया, ठीक है, यानी आधी गवाही का हक दिया गया। देखें, असल में ये चीज़ है जो एग्रीमेंट्स हैं उनके हवाले से, कि अब जहाँ पे वहाँ पे गवाही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे एक एग्रीमेंट हुआ है, ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है, या सोशल एग्रीमेंट है, तो उस एग्रीमेंट के अंदर इस्लाम ने अगर औरत की गवाही का हाफ किया है तो उसकी वजह है कि उसके ऊपर बर्डन नहीं डाला है। कि बर्डन का मतलब क्या है, मैं उसकी मिसाल आपको ये देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर एक इंसिडेंट हुआ और उस इंसिडेंट में औरत गवाह, ठीक है, तो अब क्या होगा, उसको अदालत में बुलाया जाएगा, उसको उसके ऊपर जरा भी होगी, उससे पूछा भी जाएगा, और उससे जो है वो उससे 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 पूरी डिटेल और वो सारी, वो एक जब विटनेस बनती है तो सारी मराहल से उसे गुजरना पड़ता है, ठीक है। उसमें फिर इस्लाम ने क्या किया कि बर्डन उस पर कम डाला है, कि ताकि अदालतों के और ये जो सारे मामलात हैं, यानी औरत चूँकि छुपाने की चीज़ है, वो पर्दा है, उसका पर्दा रखा जाए, उसका भरम रखा जाए, उसको इस तरह ओपनली अदालतों के अंदर और कचहरी के अंदर और कटहरे के अंदर इस तरह
जाने ना पड़े ना।
ना पड़े, तो इस वजह से उसका। बाकी जहाँ तक औरतों के मामलात हैं, औरतों के मामलात में औरत की गवाही, वो यानी उसमें कोई मर्द की गवाही का है मुदाखलत ही नहीं है, उसी की गवाही मोतबर है। इसकी मिसाल मैं आपको दो तीन देता हूँ कि अगर बच्चा पैदा हुआ है, जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के टाइम पे औरत के पास औरतें ही होती हैं, दाई होती है, लेडी डॉक्टर होती है, जो उसको भी नर्सेज होती हैं जो उसको हैंडल कर रही होती हैं। अब वहाँ पे अगर बच्चा पैदा हुआ और पैदा हो के उसकी जो है वो उसने वो रोया है, उसने आवाज़ निकाली है, तो उसका हुक्म अलग है, और उसने आवाज़ नहीं निकाली और उसको ये डिक्लेयर किया गया कि ये तो फौतशुदा पैदा हुआ, अब उसके अहकाम अलग है। यानी एक बच्चा पैदा हो के उसने सिर्फ आवाज़ निकाली, सांस ली, उसका हुक्म ही अलग हो गया, उसका जनाजा और वो सारी चीज़ें, और
सलाम
उसके मुकाबले में अब इसमें किसी मर्द की कोई गवाही नहीं है। ठीक है, इसी तरह औरत की जो अगर तलाक हुई है, इद्दत की जो मामलात हैं, उनमें मर्द से नहीं पूछा जाता है, औरत की ही गवाही होती है। यानी मर्द अगर भी उसके मेंसेस का क्या है, उसकी इद्दत वो खुद बताती है कि उसके मेंसेस आ गए हैं, 3 पीरियड पूरे हो गए हैं, तो अब उसकी इद्दत ख़त्म हो गई। और इवन कि अगर वो फुकहा ने तो इस हद तक लिखा है कि 39 डेज में मिनिमम 3 पीरियड्स हो सकते हैं। ठीक है, यानी 1.5 महीने के अंदर उसकी इद्दत पूरी हो सकती है, तो फुकहा उसको कबूल करते हैं। औरत की अपनी बात को, यानी औरत इसमें, यानी मामला जब औरत का आ गया है, तो उसमें अब उसकी अपनी गवाही ही फुल गवाही है, उसकी अपनी गवाही को आफ नहीं किया गया। लेकिन जब मर्दों के साथ मामला आ गए हैं, और उसमें फिर गैर महरम, और फिर वो सारे मामला, तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि इस वजह
बिल्कुल
से जो है वो इस्लाम ने औरत की गवाही को, जो उकूद हैं, जो मामलात हैं, उनके अंदर आके उसको हाफ किया है। तो ये असल में हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हम चीज़ को सिर्फ एक एंगल से देखते हैं, और एक एंगल से देख के सारी चीज़ों पे उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और फिर जो है वो लोग भी और उस हवाले से कंफ्यूज भी होते हैं और परेशान भी होते हैं, और ये शायद अल्लाह ताला ने जो है वो तकसीम जो है वो आदलाना नहीं की है। अल्लाह ने बड़े अल्लाह के जो अहकामात हैं उनके अंदर बड़ी हिकमत है,
सुबह
और उस हिकमत को, असल मसला ये होता है कि हम या तो उस लेवल पे जाके सोचें, चीज़ों को डिफरेंट अंदाज में देखें, तो फिर वो चीज़ें हमें समझ भी आ सकती हैं और उनको हैंडल भी किया जा सकता है।
लेकिन इसके अंदर ये भी तो आया ना, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं हैं, इल्म नहीं हासिल करते और पूछते नहीं हैं। जो कुछ भी आपने बताया औरत की गवाही के हवाले से भी, कि उन्होंने जो कुछ सुना हुआ है उसको हर जगह पे लगा देना कि औरत की गवाही यहाँ पर भी आती है, वहाँ पर भी है। और जैसे आप आपने भी थोड़ी देर पहले समझाया, लेकिन क्योंकि हमारा आज का टॉपिक, जैसे आप हमारी बात से बात नहीं
जी
कर
जी
रही है,
जी जी
तो मैं साथ साथ ये भी पूछना चाहूँगा कि हमारे कल्चर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लगता है आपको कि पोल्यूटेड हो चुकी हैं हिंदुआना रसूमात की वजह से। कोई ऐसी चीज़ है आपकी नज़र में जो आप लोग आपसे लोग पूछते हैं तो आप कहते हैं ये तो मेरे भाई दूसरी तरफ से रसम आई है? कोई ऐसी बात जो आपके जहन में आ रही हो जो आप शेयर करना चाहेंगे?
देखिए, हमारी इस वक्त जो सोशल लाइफ है, अगर मैं ये कहूँ तो उसमें मुबालगा नहीं होगा कि हमारी मेजॉरिटी, यानी मोर देन 70% सोशल लाइफ, हमारे सोशल इवेंट्स, वो बाकायदा तौर पे मुतासर हैं, अफेक्टेड हैं, और उसके लिए आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो पोल्यूटेड है। ठीक, तो ये ऐसे हैं। अब देखिए ना, हमारी यानी पैदाइश से लेकर वफात तक जितनी प्रैक्टिसेस हैं, उन प्रैक्टिसेस में जो है वो इस्लाम को हम छोड़ के हमने उन्हीं चीज़ों को जो है वो इस्लामाइज़ किया है, यानी उसी इंडियन कल्चर को इस्लामाइज़ हमने किया है। जैसे पैदाइश पे आप देख लें, और पैदाइश से लेकर वफात तक के जितने मराहल हैं, एक इसमें खुशी के लम्हात आएंगे, शादी ब्याह की रसूमात आएंगी, फिर उसके ये सारे, तो ये चीज़ें उस कल्चर से हमारे यहाँ आई हैं, और उसी कल्चर में। और इसमें एक और चीज़ भी है कि औरत जो है, औरत सिर्फ इंडियन कल्चर में मजलूम नहीं रही है, ये यहूदियों के यहाँ भी औरत पे बड़े जुल्म सितम ढाए गए, ईसाइयों के यहाँ भी अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो ये चीज़ें हुई हैं, और यही चीज़ें जो है वो हमारे माशरे के अंदर भी वहीं से आई हैं। और जैसे यहूदियों के बारे में तो ये आता है कि मेंसिस के दिन होते थे तो वो औरत को घर से निकाल देते थे, यानी मोहल्ले के अंदर ही अलग से एक मकान बना हुआ है कि जहाँ पे मेंसेस वाली औरतें रहेंगी, वो घर के अंदर ही आना उसको ये समझते थे कि ये तहारत के ख़िलाफ़ है और पाकीज़गी के
नहुस
ख़िलाफ़
है
है, उसके
हराम।
हाथ से पका हुआ खाना वो पसंद नहीं करते थे, नहीं इस हद तक वो उससे डिस्टेंसिंग रख लेते थे, सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे वो पता नहीं कोई अछूत की बीमारी उसको लग गई है या ऐसा कोई अफेक्टेड की चीज़ है। तो ये असल में वो चीज़ें हैं कि जो देखा देखी, इस्लाम ने तो ये सारी चीज़ें बड़े बैलेंस अंदाज में बताई हैं, यानी ठीक है मेंसेस हैं लेकिन उसको एक बीमारी कंसिडर करार दिया है, और उसमें ऐसे नहीं कहा कि आप उसको घर से निकालें, उसके हाथ का जो है वो खाना पीना बंद कर दें, इस तरह डिस्टेंसिंग, बल्कि उसे घर के अंदर ही रहते हुए सारी चीज़, ताकि कोई लोग उसको महसूस ही ना कर सकें घर के अंदर भी कि ये मराहल ऐसे हो रहे हैं। असल में देखें, ये जो विरासत के मामलात हैं जिनके हवाले से मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये बाकायदा तौर पे ये फ़राइज़ के अंदर सहाबे किराम में इसका बड़ा अहतमाम भी था, और ये चीज़ें सीखने का रुझान भी था, और इसको बाकायदा जो है वो इल्म की बुनियाद भी करार दिया गया है। अब केस टू केस, यहाँ पे ये चीज़ समझने की है कि ये चीज़ें केस टू केस होती हैं, यानी अब जाहिर बात है एक बंदा है, उसका एक बेटा और एक बेटी है, उसकी वालदा है, वालिद हैं, उसकी एक बीवी है, ठीक है। अब उनकी विरासत और उसके फिर असासजात कितने हैं, एसेट कितने हैं, वो अलग अंदाज में तकसीम होंगी। एक बच्चा है, एक बंदा है कि जिसकी वारिस एक ही बेटी है और उसका कोई नहीं है, उसकी विरासत कितनी होगी। तो ये एक, यानी इस्लाम ने हमें जनरल प्रिंसिपल तो बता दिया है कि क्या है, लेकिन उसकी जो तकसीम है, यानी वो फार्मूला जो है, फार्मूला तो हमारे पास है, लेकिन उस फार्मूले को हर जगह पे इम्प्लीमेंट करना होगा, और इसमें चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज के साथ देख के करना होता है। हमारे यहाँ एक चीज़ और भी है कि विरासत की तकसीम में ताखीर की जाती है, और विरासत की तकसीम में ताखीर करते करते होता यह है कि कोई एक वारिस भी इस दौरान शायद वो दुनिया से चला जाता है, और उसके आगे फिर जो वारिस हैं वो उस वजह से महरूम हो जाते हैं कि जी वो पेपर वर्क में उस तरह नहीं हो सका। तो पाकिस्तान में जो विरासत का कानून है, यानी पाकिस्तान के अंदर जो इम्प्लीमेंट है महकमा माल से, जो आप जो प्रॉपर्टी है और वो सारी चीज़ें, तो वो यानी अकॉर्डिंग टू इस्लाम ही है, तकरीबन इस्लामी कोई एकाध शिक के अलावा। तो जो तकसीम होती है, जो ज़मीन आगे तकसीम होती है, उसी तरतीब से जो शेयर अल्लाह ने मुतय्यन किए हैं, जो कुरान में बताए गए हैं, बेवा का हिस्सा या शोहर का हिस्सा, माँ बाप का हिस्सा, इसी तरह जो अगर आपके को बैंक बैलेंस था तो वो भी उसी अंदाज में तकसीम होते हैं कि जितना जितना जिसका शेयर होता है, जितने परसेंट बनता है, तो उसी परसेंट से वो आगे तकसीम हो जाता है। तो ये यानी कानून मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी है, लेकिन प्रोसेस उसका जो है वो, यानी उसका इम्प्लीमेंटेशन का है कि वो रैपिडली इम्प्लीमेंट नहीं होता। जब वो तेज़ी से इम्प्लीमेंट नहीं होता तो मसाइल फिर जाहिर बात है कि बढ़ते जाते हैं।
लेकिन क्यों ऐसा होता है? आपको लगता है कि ये हमारे कल्चर में एक पूरी की पूरी ये आदत बन चुकी है लोगों की कि इसके ऊपर बात नहीं करनी, वाले साहब चले गए हैं या फिर वालदा चली गई, और ये क्या ये वो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है औलाद के ऊपर या फिर ख़ानदान के उन लोगों के ऊपर किसके ऊपर बात कर रहे हैं? पता नहीं कितना बड़ा नुकसान हुआ है आप लोगों को, आप इसकी बात कर रहे हैं। मैं
बिल्कुल,
इसलिए
मैं
कह रहा हूँ
हाँ
क्योंकि हम
देख,
देखते हैं ना इर्द गिर्द अपने कि ये
ये
होता
समझना,
है।
ये कुछ चीज़ें टैबू बना दी गई हैं ना। तो अब देखें, आमतौर पे जो ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा बनते हैं, जो स्टेबल लोग हैं जिनके पास कुछ एसेट्स हैं, उनके यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। कि अब बच्चे अभी फौत हुए, बच्चों यानी अभी वालिद फौत हुआ है या वालदा फौत हुई है, और फ़ौरन ही जी विरासत की तकसीम की बात, ये ख्वाहिशमंद हज़रात वहाँ पे मौजूद होते हैं, और औलाद अगर फैमिली खुद ना भी चाहती हो, वो कहते हैं कि जी उन्होंने जी, अगर वो कहते हैं कि ये हम तकसीम करें, तो फिर कहते हैं कि वो जी अपनी वालदा की या वालिद की कब्र की मट्टी भी अभी तो खुश्क नहीं
हाँ
हुई थी।
ये काफी सुनने
हाँ
को
जी,
मिलता है
अभी
लोगों
खुश्क
को।
नहीं हुई थी, और ये जी बंटवारा इन्होंने शुरू कर दिया है,
जी
तकसीम शुरू कर दी है। देखें, आम तौर पे हमने एक्सपीरियंस किया है कि मेजॉरिटी, यानी जिनके पेरेंट्स स्टेबल थे, इकोनॉमिकली स्टेबल थे, और उन्होंने वो चीज़ें बनाई, लेकिन अगर वो तकसीम नहीं हुई तो आगे औलाद उनके तकसीम के हवाले से उसने धक्के भी खाए हैं, और जिनके लिए उन्होंने बनाया था वो आपस में उसी जायदाद की वजह से, उसी प्रॉपर्टी की वजह से उनमें दूरियां पैदा हुई हैं, वो आपस में फिर जोड़ के नहीं रह
करीब में
सके
आते फिर
हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये
यार फिर।
पाकिस्तानियों की बात है, पाकिस्तानी जहाँ पे भी हैं, ठीक है, दुनिया के जिस कोने में भी हैं। तो ये हमारे यहाँ ये चीज़ें ऐसे हैं। तो इस हवाले से पहली चीज़ तो मैं ये समझता हूँ कि जिनका जो शेयर बनता है उनको दे देना चाहिए, उसमें पसंद नापसंद वाली बात, अगर इसमें जो बड़ा है, ये जो मर्द हैं, वो इसमें अगर बहनों को इख्तियार दें इंतखाब की से, जो है ठीक है, अपनी मर्जी से आप ले लें, तो यकीन मानिए कि इसकी बरकतें इतनी हैं। एक हमारे एक जानने वाले हैं, तो उनकी उनके वाले साहब ने कुछ तरका छोड़ा, उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई थी, कुछ प्लाजे थे, मार्केटें थी, ज़मीनें थी, तो उन्होंने ऐसे नहीं किया कि जी ये ज़मीन इतनी बनती थी, ठीक है 10 कनाल है, 20 कनाल है, तो ये 2 कनाल बहन को बनती है तो दे दे। उन्होंने जहाँ जहाँ ज़मीन थी, जैसी जैसी जो ज़री ज़मीन थी, काबिले काश्त थी, या जो प्लाजे थे, उसमें बाकायदा प्लाजों के अंदर बहनों को कहा कि आप अपनी मर्जी से दुकानें चूज कर लें, पुल अप प्लाजा तो अब हो नहीं सकता है, तो उन्होंने मर्जी से बहनों ने फ्रंट वाली दुकानें ले ली, कॉर्नर वाली, फ्रंट वाली, उनका ठीक है,
माशाल्लाह
खुद बैक वाली ले ली। तो मैंने ये देखा है कि उनकी ज़िंदगी में मैंने खुद देखा कि अल्लाह ने, यानी बहनों को उन्होंने दिया कि मेरी बहनें हैं, मेरे वालिद जिंदा होते तो वो इस तरह तकसीम करते, वो खुश होते, ठीक है। तो उन्होंने जो इस अंदाज में तकसीम की, और बहन भाइयों में बड़ी यानी इत्तेहाद भी है, मोहब्बत भी है, और उनकी औलाद के अंदर इसकी बरकतें हैं कि औलाद भी नेक है, और वो सारी चीज़ें।
बेशक
हमारे यहाँ ये है ना कि जब हम किसी का हक मारते हैं, यानी बहन ही है बेशक, वो मजबूर हो के उस वक्त तो दे देगी, अपने मेका बचाना है, भाई बचाना है, या भाई जो आपकी मर्जी है, तो हमारे यहाँ या तो ऐसा दिया ही नहीं जाता, या दिया जाता है तो रद्दी सबसे नकारा, या सबसे जिसको नापसंद कर रहे होते हैं अपने लिए, वो जो है वो उसको दिया जाता है, वो
घर से
मजबूर होके
बाहर।
वो भी ले लेती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब आप किसी का हक मारते हैं ना, तो उसकी नहुसत बड़ी होती है, ठीक है। और वो नहुसत आप अपनी ज़िंदगी के अंदर भी देखते हैं, और आगे ये नहुसत ट्रांसफ़र भी होती है, किसी का हक आगे मार के जो है वो आगे जब लेके जाते हैं। मुझे याद आ रहा है मौलाना तारिक जमील साहब का एक, उन्होंने एक दफ़ा वाक़या ये जिक्र किया अपने उस्ताद के हवाले से, क्योंकि वो भी ज़मींदार ख़ानदान से हैं, तो वो एक दफ़ा शहद लेके गए अपने उस्ताद के पास, तो ये मैं आपके लिए खालिस कर का शहद है ये लेके आया। तो उन्होंने कहा कि ये शहद मतलब इसमें कोई मिलावट, कहते नहीं हज़रत खालिस घर का शहद है, अपने बागों से उतरवाया। कहते हैं कि ठीक है, उस तरह तो मिलावट नहीं होगी, लेकिन वो जो बाग हैं, आया वो तुम्हारा हक है भी या नहीं है, यानी तुम्हारे वालिद ने अपनी बहनों को उनका हक दिया था कि नहीं दिया था,
तमाम
ठीक है। अगर ये ऐसे उनको हक उनका नहीं मिला, तो बेशक वो चीज़ मक्खियों की तो बनाई हुई खालस ही है, लेकिन वो जो दरख्त जिसके ऊपर वो शहद लगा, तो उस या जिन दरख्तों का उसने रस, उन्होंने रस चूसा, ठीक है, तो वो जाहिर बात है कि वो खालिस नहीं थे, तो इस वजह से उसकी बरकत। तो ये यानी देखें, ये हमारे जो असलाफ थे, बुजुर्गान दीन, जिनका हम रेफरेंस देते हैं, जिनकी बरकतों का हमने खुद मुशाहिदा भी किया है, करते भी हैं, अल्लाह ने उनके वक्त में, असलाहियतों में, हर चीज़ में बरकत दी, तो उनके अंदर यानी इस हद तक एहतियात थी, तकवा की ये कैफियत थी, और यही यानी कैफियत मतलूब भी होनी चाहिए कि जिसका जो हक है, ठीक है, जितना बनता है खुशी के साथ, ठीक है, उसको अदा करें। बेशक अपना सरेंडर करना पड़ता है, अपनी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, ख्वाहिश मारनी पड़ती है, दिल को जो है वो मारना पड़ता है, मारने को मसला नहीं है, लेकिन उसकी बरकतें आपको दुनिया के अंदर भी और अपने ख़ानदान के अंदर, अपनी नस्लों के अंदर उसकी बरकतें मिलेंगी। लेकिन अगर ऐसे नहीं होगा, तो बड़े बड़े यानी बिलियनर होते हैं, तो औलाद उनकी आगे ऐसे ही
कुश्ती तक
मतलब
नहीं उनको।
नहीं धक्के खाती है। मैं तारीख़ का एक वाक्य आपके सामने जिक्र करूंगा, और फिर अपनी बात को, आज के हम इस टॉपिक को समेटते हैं। तारीख का वाक्या आपने नाम सुना होगा, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह, ठीक है, जो कि खलीफा मुसलमानों की तारीख के गुजरे हैं, और 99 हिजरी में से लेकर 102 हिजरी तक उनका दौर रहा है। तो उनको यानी बनू उमैया से उनका ताल्लुक़ था, लेकिन उनकी जो वालदा थी वो एक पूरी हिस्ट्री है उनकी। बर तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अपनी खिलाफत के ज़माने में, पहले शहजादगी थी, सब कुछ था, ठीक है, वो उनका रहन सहन, उनकी खुशबुएं, वो पूरे माशरे के अंदर एक वो सिम्बोलिक था, लेकिन जब खिलाफत का बोझ उन पे पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें, वो जो उन्हें मिली थी, उनको उनकी बीवी को मिली थी, तो वो सारी चीज़ें वापस बैतुलमाल में जमा करवाते हैं कि ये जो मेरी बीवी का वालिद था, और हमारी जो फैमिली ने वो जो है वो ज़ालमाना अंदाज में या अपने एक इकतदार के बलबूते पे हासिल की थी, मुसलमानों के बैतुलमाल की थी, वो वापस करवाएं सारी चीज़ें, रिश्तेदारों से भी सारी चीज़ें लेके वापस करवाएं, और बिल्कुल खालिया। और उनके भी वाक़यात में ये आता है कि ईद वाले दिन भी वो बच्चों ने लहसुन के साथ रोटी खाई, यानी ईद वाले दिन कोई पकवान नहीं पके उनके घर में, और उन्होंने यानी एडवांस सैलरी का कहा, तो वजीर खजाना ने, जो सेक्रेटरी था उसने, ट्रेजरी वाली जो भी थे, तो उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि आप अगले महीने जिंदा होंगे कि आपको एडवांस सैलरी दें। तो ये तकवा की ये कैफियत, तो जब वो दुनिया छोड़ के जा रहे होते हैं, तो वो अपने बच्चे को कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बनाया नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जब तकवा तुम्हें सामान दे के जा रहा हूँ, ये तुम्हारे काम आएगा। तो कोई दो दो दिरहम शायद थे कि जो उनके बच्चों को विरासत मिली थी, उनका कफन दफन का खर्चा निकाल के जो पीछे जो बचे थे, और उसके मुकाबले में उनके बाद जो खलीफा बना था वो उनकी वाइफ का भाई था, हिशाम बिन अब्दुल मलिक का, आपने नाम सुना होगा। तो हिशाम बिन अब्दुल मलिक के बच्चे, जब वो फौत हुआ तो उसके बच्चों को ना 21 21 लाख दीनार, उस दौर में 1 दीनार यानी 1 तोला सोना, आप तो 21 लाख तोले सोना यानी एक एक बच्चे को मिला। और फिर देखने वालों ने देखा कि विद इन ईयर्स, ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के जो बच्चे हैं वो सुबह शाम अल्लाह की राह में घोड़ों पे घोड़े और ऊँटों पे ऊँट इन्फाक कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, और वो हिशाम बिन अब्दुल मलिक के बच्चे गलियों में भीख मांग रहे हैं। ठीक है, जब किसी का हक आप मार के, ठीक है, आप लेते हैं, तो फिर वो आगे आपकी औलाद के भी कोई काम नहीं आता, उसकी नौसतें भी बरकतियाँ होती हैं। और जब आप किसी का हक, लोगों का हक दे के, तो अपने बच्चों की आप अच्छी तरबियत और उनको हलाल का लुकमा खिलाते हैं, उसमें किसी को मिलावट नहीं होने देते हैं, तो यही जो है वो आगे के लिए खैर व बरकत का जरिया होता है। और ये खैर व बरकत आगे चलती है, ट्रांसफ़र होती है, आगे नस्लों में चलती है, ये सिर्फ बंदे तक महदूद नहीं होती। और इसी तरह ये जो हराम या किसी का हक मारना है, ये भी बंदे तक महदूद नहीं है, यह भी आगे नस्लों में ट्रांसफ़र होती है। तो इसलिए कोशिश ही करनी चाहिए कि मैं अपनी नस्लों को, जहाँ पे हम ये कहते हैं ना कि हम लयरी दे के जाएँ और उनको जो है वो अच्छा माहौल दे के जाएँ, तो अच्छे माहौल के साथ साथ ये भी हम कि उनको हलाल गिज़ा से उनकी परवरिश करें, और किसी का हक मारे बगैर जो है वो उनकी, उनको जो भी हम फैसिलिटीज़ दे सकते हैं दे, तो ये चीज़ें आगे उनकी ज़िंदगियों में खैर व बरकत का ज़रिया।
जज़ाकअल्लाह खैर मौलाना सलीम साहब हमारे साथ थे आज, और आप सुन रहे थे उर्दू पॉडकास्ट। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।